नमस्कार भारत, 18 दिसंबर बुधवार, मैं हूं आदर्श राठौर। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी बोले, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को देखते ही मारी जाए गोली।
If anybody destroys the public property, including railway, I direct as a minister shoot them at sight.
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के सीलमपुर में उग्र प्रदर्शन, हालात काबू में। नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर राजनीति तेज, गृह मंत्री बोले, जितना भी विरोध कर लो नहीं झुकेगी सरकार।
मोदी सरकार फर्म है, इस सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, वो भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ दुनिया के।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। पोप फ्रांसिस ने ऐलान किया है कि नाबालिगों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में गोपनीयता का नियम लागू नहीं होगा। इससे पहले रोमन कैथोलिक चर्च कहता था कि वो पीड़ितों की निजता और अभियुक्तों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोपनीयता बरतता है, लेकिन अब मंगलवार को जारी किए गए पोप संबंधी नए दस्तावेजों के अनुसार अब जो लोग अपने साथ उत्पीड़न होने की शिकायत करते हैं या कहते हैं कि वो पीड़ित रहे हैं, उन पर ये पाबंदी नहीं रहेगी। कॉल गोरमैन पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने ताज़ा कदम का स्वागत किया है, लेकिन ये भी कहा है कि अभी और भी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। जरूरत इस बात की है कि कैथोलिक चर्च माने और वेटिकन माने कि उन्होंने दुनिया भर में हुए अपराधों को छिपाया, वो जिम्मेदारी लें। इसका मतलब वो अपने रिकॉर्ड खोले और स्वतंत्र जांच के लिए तैयार हो जाएं। अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। ये थे कॉल गोरमैन, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को चेतावनी दी है कि वो उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट ना करें, क्योंकि ये अमेरिका के लोकतंत्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा होगा। महाभियोग की पूरी बात ही धोखा है। हम वकील नहीं कर सकते, हम गवाह पेश नहीं कर सकते, ये शर्म की बात है। डेमोक्रेटिक हाउस ऑफ इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन एडम शिफ ने झूठ बोला है। ये मेरे खिलाफ साजिश है, ये 3 साल से हो रहा है। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। इस बीच अमरीकी संसद में रिपब्लिकन नेता मिच मैकोनल ने डेमोक्रेट्स की वो मांग ठुकरा दी है जिसमें वो कह रहे थे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग से जुड़े मुकदमे में व्हाइट हाउस के अधिकारियों को गवाही के लिए बुलाया जाए। सीनेट के शीर्ष डेमोक्रेट नेता चक शूमर चाहते हैं कि व्हाइट हाउस के 4 वरिष्ठ अधिकारी गवाही के लिए और सबूत पेश करने के लिए बुलाए जाएं। पोलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक सिस्टम में प्रस्तावित सुधारों से यूरोपीय संघ में देश की सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। नए बिल से सरकार के लिए जजों को हटाना आसान हो जाएगा, लेकिन कोर्ट का कहना है कि ये यूरोपीय संघ की संधियों का उल्लंघन होगा। वहीं यूरोपीय संघ का कहना है कि नए बदलावों से न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता कम हो जाएगी, लेकिन पोलैंड की सरकार कहती है कि नया बिल जजों को राजनीति में पड़ने से रोकेगा। भारतीय फिल्म अभिनेता और रंगकर्मी श्रीराम लागू का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। 100 से अधिक हिंदी और मराठी फिल्मों में काम कर चुके श्रीराम लागू ने पुणे में अंतिम सांस ली। सिनेमा के अलावा मराठी, हिंदी और गुजराती रंगमंच से जुड़े रहे श्रीराम लागू ने 20 से अधिक मराठी नाटकों का निर्देशन भी किया। मराठी थिएटर में वो उन्हें 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन कलाकारों में गिना जाता है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में $1.4 ट्रिलियन का बजट पास किया गया है। इसके साथ ही आंशिक रूप से सरकार का काम रुकने की संभावना भी टल गई है, क्योंकि सरकारी फंड शनिवार को खत्म होने वाला है। ये बजट अब सीनेट में पेश किया जाएगा। इस बजट में ओबामा केयर में लगने वाले टैक्स की तरह कुछ और टैक्सों को पूरी तरह से हटाने की बात की गई है। साथ ही तंबाकू खरीदने की कानूनी उम्र भी बढ़ाकर 21 कर दी गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिसों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 19 लोग घायल हो गए और 20 से ज़्यादा को गिरफ्तार कर लिया गया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम में सबसे पहले बात नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की। इन प्रदर्शनों के बीच रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने कहा है कि उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को आदेश दिया है कि अगर कोई रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो देखते ही गोली मार दी जाए। उन्होंने क्या कहा सुने।
सम एंटी सोशल एलिमेंट्स सपोर्टेड बाय द अपोजिशन दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द कंट्री एंड दिस सिटीजन अमेंडमेंट बिल इज नॉट गोइंग टू हार्म।
कुछ असामाजिक तत्व विपक्ष के समर्थन से ये सब समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन बिल किसी भी नागरिक के खिलाफ नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को हमने भारत में रहने का अधिकार दिया है, लेकिन कुछ स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय देश के अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए बेवजह समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। उन्हें कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल है। मैं इसकी निंदा करता हूं और सभी जिला प्रशासन और रेलवे अथॉरिटी को एक मंत्री के तौर पर आदेश देता हूं कि अगर कोई रेलवे समेत किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उसे देखते ही गोली मार दी जाए, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। एक ट्रेन और किसी भी चीज को बनाने में सालों लग जाते हैं, उनका खून पसीना एक होता है। अगर कोई इसे बर्बाद करता है तो सरकार को सरदार पटेल की तरह कड़े कदम उठाने चाहिए।
कुछ जगहों पर हिंसक प्रदर्शनों के दौरान रेलवे की संपत्ति को हुए नुकसान के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने ये बात कही। उनके इस बयान से पहले कल दिन भर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के कारण पैदा हुए हालात को लेकर जो राजनीति है वो जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की नीतियों को विभाजनकारी बता दिया। कांग्रेस ने केंद्र पर विरोध प्रदर्शनों को अलोकतांत्रिक तरीके से कुचलने का आरोप भी लगाया। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया है कि इस कानून के तहत गैर मुस्लिम शरणार्थियों को हर हाल में नागरिकता दी जाएगी। रिपोर्ट सुनिए हमारी सहयोगी गुरप्रीत सैनी से।
नागरिकता संशोधन कानून पर देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी जहां विपक्ष पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है, वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार की नीतियां देश में अशांति पैदा कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को झारखंड के बरहेट में चुनावी सभा के दौरान कहा कि अगर हिम्मत है तो कांग्रेस को खुलेआम ये ऐलान करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिक देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां देश के मुसलमानों में डर का माहौल बना रही हैं।
कांग्रेस और उसके जैसे दलों और उसके वामपंथी इकोसिस्टम ने पूरी ताकत झोंक दी है भारत के मुसलमानों को डराने के लिए। ये लोग देश में झूठ और भ्रम का माहौल बना रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, जबकि ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ है कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत के एक भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा।
वहीं कल दिल्ली में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से मोदी सरकार की शिकायत की और कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को सरकार कुचलने की कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज नहीं दबाई जा सकती। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश के हालात कश्मीर जैसे बना दिए गए हैं।
इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए और बच्चे सड़कों पर हैं और जिस बेदर्दी से लाठीचार्ज हो रहा, आज मैं सुबह आसाम बात कर रहा था, 5 लड़के तो गोली से मारे गए, 21 लड़के गोली से जख्मी हैं, सैकड़ों लोग अंदर जेलों में हैं, तो कश्मीर की तरह ये रिपीट हो रहा है पूरा देश। कश्मीर के बाद नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बाद अब पूरा देश वही फार्मूला अपनाया गया है। टेलीफोन बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, मैसेज बंद कर दो, टेलीविजन पे कोई खबर ना आए, पेपर में खबर ना आए, सिर्फ पुलिस से काम ले लो, तो ये पुलिस सरकार हो गई है पूरी देश, इसकी ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज निंदा करते हैं और यही माननीय राष्ट्रपति जी को हमने बताया।
इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी दिल्ली में भारत वंदना पार्क के शिलान्यास के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की शांति भंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को जितना विरोध करना है करे, लेकिन नया नागरिकता कानून लागू होकर रहेगा।
मैं आज दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, ये विपक्ष केजरीवाल एंड कंपनी और कांग्रेस पार्टी जो गुमराह कर दिल्ली की शांति को पानी में जो कंकर डालने का काम कर रहे हैं, उनको पहचानने की जरूरत। मैं कहना चाहता हूं कि जो 70-70 साल से यहां शरणार्थी बनकर आए हैं, हजारों हजारों अफगानिस्तान के सिख भाई, पाकिस्तान से आए हुए कई दलित भाई बहन दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर पर रहते हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टियों को जाइए जरा इनकी सुन लीजिए। और मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है करो, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार फर्म है, इस सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, वो भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ दुनिया के अंदर।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और दिल्ली समेत कई जगहों पर प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और पक्ष विपक्ष के नेता शांति बरतने की अपील कर रहे हैं, मगर कहीं कहीं इन प्रदर्शनों के उग्र होने से जान माल का भी नुकसान हो रहा है।
जानकारी दे रही थी गुरप्रीत सैनी। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जो हालात पैदा हुए हैं उसे लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार को दोष दे रहे हैं, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने कल अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर दिल्ली की शांति को भंग करने का आरोप लगाया। दरअसल रविवार को जामिया नगर इलाके में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद कल एक बार फिर दिल्ली में भीड़ उग्र हो गई। सीलमपुर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे लोगों की पुलिस के साथ झड़पें हुई। इस दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार ने कहा है कि सीलमपुर की घटना में 21 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 12 दिल्ली पुलिस के और 3 रैपिड एक्शन फोर्स के कर्मचारी हैं। 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उन्होंने बताया कि हालात को काबू में करने के लिए मदरसों और मस्जिदों से अमन की अपील की गई और अब हालात नियंत्रण में हैं। दिल्ली से छपने वाले अखबार किस तरह से इस घटना को देखते हैं, किस तरह से कवर किया है, बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी सहयोगी गुरप्रीत सैनी। जी गुरप्रीत
जी। आदर्श, टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन लगाई है कि दिल्ली में ताज़ा झड़पें, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीलमपुर में हुआ संघर्ष, और एक तस्वीर है। ये तस्वीर मैं आपको बता दूं कि लगभग सभी अखबारों में एक ही जैसी तस्वीर है ये, जहां पे कि भीड़ है लोगों की, जिन्होंने मुंह पे नकाब लगाए हुए हैं, वो पत्थरबाजी कर रहे हैं और हर तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए हैं। उनके पास में एक जलता हुआ कुछ दिख रहा है, आगजनी हुई है, उसमें से धुआं निकल रहा है। तो ये तस्वीर लगभग सभी अखबारों में है। दैनिक भास्कर ने हेडलाइन लगाई है कि अब सीलमपुर सुलगा, और पंजाब केसरी लिखता है कि अब सीलमपुर में बवाल। पंजाब केसरी में ही 3 तस्वीरें हैं, बस एक है जिसकी खिड़कियां टूटी हुई हैं, पुलिस बूथ में तोड़फोड़ हुई है, पत्थर ही पत्थर उसके अंदर दिख रहे हैं, और 7 मेट्रो स्टेशन बंद, यानी कि खाली मेट्रो स्टेशन की भी एक तस्वीर यहाँ पे मुझे दिख रही है। हिंदुस्तान टाइम्स में अगर मैं हेडलाइन पढ़ूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि हिंसा के पीछे गंदी राजनीति और अर्बन नक्सल, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और द इंडियन एक्सप्रेस में अगर मैं हेडलाइन पढ़ूँ तो उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और उसके साथी सभी पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता क्यों नहीं दे देते हैं, और जो विपक्ष है राष्ट्रपति के दरवाजे पर पहुंचा और उनसे मुलाकात की। तस्वीर यहां पे है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ए के एंटनी, जावेद अली खान, डी राजा, राम गोपाल यादव, टी आर बालू समेत कई विपक्ष के नेता इसमें नजर आ रहे हैं।
जी, मेरे पास इस वक्त दैनिक भास्कर है और ये दिल्ली के सीलमपुर को लेकर जो कल घटनाक्रम हुआ उसको लेकर लिखा है कि जामिया से शुरू हुआ बवाल पूर्वी दिल्ली तक पहुंचा, अब सीलमपुर सुलगा। तस्वीर में सड़क पर टूटी हुई ईंटें बिखरी पड़ी हैं, पीछे जो भीड़ है उसमें एकदम युवा चेहरे हैं, कुछ बच्चे से दिखाई दे रहे हैं, एक के हाथ में तिरंगा है और एक पत्थर फेंकता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही एक खबर है कि जामिया हिंसा मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक उनको नामजद किया गया है और जो 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम भी दिए गए हैं और साथ ही साथ ये कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं उन पर भी FIR दर्ज हुई है।
द इंडियन एक्सप्रेस में उन्हीं का कार्टून है, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, जिसमें लिखा हुआ कि कैबिनेट का ध्यान शिफ्ट हो गया है रोटी से कपड़े की तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में कहा था कि जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। इसके बाद ममता बनर्जी जो हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है और कहा है कि किसी के कपड़ों से राजनीतिक विचारधारा उसकी पता नहीं लगाई जा सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत। नागरिकता कानून में संशोधन के विरोध में भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में भी प्रदर्शन लगातार जारी हैं। आज वहां पर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए गुवाहाटी से हमारे सहयोगी रवि प्रकाश हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। जी रवि प्रकाश, ये कौन हड़ताल कर रहा है, कोई संगठन है या कोई, ये सभी कर्मचारी एक साथ हड़ताल पे जा रहे हैं?
ये असम राज्य कर्मचारी परिषद है जो अराजपत्रित कर्मचारियों की सबसे बड़ी संस्था है असम राज्य की, तो इसके आह्वान पे सारे कर्मचारी आज कलमबंद हड़ताल पर जाएंगे। सरकार ने यह कहा है कि ठीक है, हम वेतन तो नहीं काटेंगे हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के, लेकिन इनको कैजुअल लीव लेना पड़ेगा, मतलब इनको अपना लीव एडजस्ट कराना पड़ेगा। तो एक बड़ी बड़ा डेवलपमेंट है आज जो गुवाहाटी में होगा। दरअसल ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो आसू है उसका गण सत्याग्रह चल रहा है, उसका आज आखिरी दिन है, तो ये सब लोग उसी गण सत्याग्रह में शामिल होंगे। और सुप्रीम कोर्ट में आज गुवाहाटी मामले की सुनवाई है, CA को लेकर वहां पे वकील अपना पक्ष रखेंगे, इसको लेकर भी असम के लोगों की निगाहें टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट पर। अखिल गोगोई जो बड़े नेता थे जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था पिछले दिनों, उनको NIA कोर्ट में लाया गया था, तो इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई अखिल गोगोई की कौन से टेरर रिंग है जो उनके मामले की जांच NIA करेगी। एक और जो डेवलपमेंट है वो यह है कि मोबाइल इंटरनेट जो है वो पिछले 7 दिनों से बंद है पूरे असम में, असम के अधिकतर इलाकों में, तो इसको खुला जाना भी बाकी है। जो ऊपरी असम के इलाके हैं जैसे डिब्रूगढ़, इन सब जगहों पर रात का कर्फ्यू चल रहा है, गुवाहाटी का कर्फ्यू हटा लिया गया है। और जो एक मैं कल देख रहा था सत्याग्रह में लोगों ने कई तरह की तख्तियां लगाई हुई थी, इसमें लिखा हुआ था नॉर्थ इज नॉट डंपिंग ग्राउंड फॉर इलीगल बांग्लादेशी, तो इस तरह की भावना लोगों में है। और कॉटन यूनिवर्सिटी है यहाँ की बड़ी, जहाँ से छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया था पिछले दिनों, वहां पे मैंने देखे वी वांट पीस के पोस्टर लगे हैं, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करना चाहते हैं। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि प्रकाश, गुवाहाटी से जानकारी दे रहे थे कि आज वहां पर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। सरकार ये कह रही है कि हम रोकेंगे नहीं, आपको जाना है हड़ताल पर जाएं, लेकिन आपको छुट्टी लेनी होगी।
BBC हिंदी रेडियो का नमस्कार भारत कार्यक्रम आप 25, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 5875, 5845, 7430 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर भारतीय समय के मुताबिक रोजाना सुबह 6:30 से 7 तक सुन सकते हैं। हमारे सभी कार्यक्रम आप bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं।
अब बात पाकिस्तान की, जहां पर एक विशेष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई है। मुशर्रफ अभी पाकिस्तान में नहीं हैं और दुबई में अपना इलाज करवा रहे हैं। विशेष अदालत के फैसले पर पाकिस्तान की सेना ने कड़ा एतराज जताया है। हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने पाकिस्तान में राजनीतिक विश्लेषक बेनजीर शाह से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की कोई अदालत मौत की सजा सुनाएगी, क्या इस बात की उम्मीद थी या फिर ये एकदम अप्रत्याशित है?
बिल्कुल, ये एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन पाकिस्तान में भी थी, इसलिए सरप्राइजिंग थी और इसलिए अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज है, पाकिस्तान की जो सियासत है और जो पाकिस्तान का निज़ाम जैसे चलता है, उससे नहीं लगता था कि इतने बड़े अदारे की या एक साबिक आर्मी चीफ को कभी सजा सुनाई जाएगी, और वो भी आईन की एक गैर कानूनी या गैर जमहूरी निज़ाम की वजह से, तो कभी हमें नहीं लगता था कि ऐसा होगा। और अगर आप अभी पिछले कुछ 2-3 महीनों में इस हकूमत ने भी बहुत कोशिश की थी कि ये फैसला ना आए, उन्होंने पहले तो जो प्रोसिक्यूशन टीम थी जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस लड़ रही थी उसको डीनोटिफाई कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहुंच गए, उधर उन्होंने कहा कि ये स्पेशल कोर्ट बनी गैर कानूनी तरीके से, इसको आप खत्म करें। तो ये इस हुकूमत की पूरी कोशिश थी, बल्कि आज भी मैं आपको बताऊं कि जब ये अदालत के फैसला सुनाने लगी थी तो हुकूमत की तरफ से 3 अलग-अलग पिटिशन गए थे अदालत में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो साबिक वजीर आजम थे, साबिक चीफ जस्टिस थे, साबिक लॉ मिनिस्टर थे, उन सब का भी आप नाम डाले इसके अंदर, जिस पे जज साहब जो थे उन्होंने रिमार्क किया था कि आप तो ये डिले करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रायल को। तो यहाँ पे भी पूरी हुकूमत की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई, मुशर्रफ साहब की तो अपनी तरफ से कोशिश थी कि ये फैसला ना आए, क्योंकि ये एक तारीखी फैसला है, इसमें कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है कि कभी ऐसा कोई फैसला आया है।
आपने इसको तारीखी फैसला कहा, पाकिस्तान के इतिहास में इससे पहले इस तरह का कोई वाकया कभी सामने नहीं आया?
कभी भी नहीं आया। और इन किस्म की चीजों पे पॉलिटिकल जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में वो ज्यादा शोर नहीं मचाती, तो इस तरह के मामले जो होते हैं वो सेटल हो जाते हैं खुद ब खुद। तो हमें भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि ये भी इशू जो है कहीं ना कहीं या तो डिले हो जाएगा या सेटल हो जाएगा, कि शायद इसमें फैसला नहीं आएगा। अगर आप इसकी सिर्फ टाइमलाइन देखें कि किस तरह ये केस शुरू हुआ, ये केस जो था जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2009 में, तब भी इसकी बात हो रही थी कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ का केस होना चाहिए, और उस वक्त की जो वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने कहा था मैं ये केस नहीं कर सकता। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत आई तो उन्होंने भी बड़ा थोड़ा सा वो घबराए इस केस को लेने में, लेकिन फिर ये हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट थी तब की, उन्होंने फिर दबाव डाला था कि नहीं आपके पास ये इतने दिन हैं, आपने ये रेफरेंस फाइल करनी है, क्योंकि गद्दारी का केस जो है वो सिर्फ हुकूमत से आ सकता है अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये ऊपर की अदालत में जब मामला जाएगा तो इसमें क्या वाकई इसका ग्राउंड इतना मजबूत है कि ये मामला टिकेगा, सजा बरकरार रहेगी, या इसमें लूप होल्स भी हैं?
देखिए ये बिल्कुल है लूप होल्स हैं। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये केस गया था, जब उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया था और उन्होंने स्पेशल कोर्ट से कहा था कि ये दोबारा केस सुना जाए, तो उनकी अगर आप ऑर्डर पढ़ें तो उसमें उन्होंने ये चीज बड़े वाज़ह तौर पे लिखी हुई है कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि वो कहते हैं कि मुशर्रफ साहब के जो काउंसिल थे उनको सही तरह सुना नहीं गया, तो उसमें वो कहते हैं कि राइट टू फेयर ट्रायल तो मुशर्रफ साहब का है, चाहे उन पर जो भी इल्जाम हो, किसी का भी हो, कोई दहशतगर्द भी पाकिस्तान में हो, तो उनका राइट टू फेयर ट्रायल तो होता है। तो उस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि क्योंकि ये इतना एक संगीन इल्जाम है और ये इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है कि आपको सारे कानून के जो तकाजे हैं वो पूरे करने पड़ेंगे, और तो इस पर मेरे ख्याल से जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस तो इस पर बहस जरूर होगी कि बहुत जल्दबाजी में शायद सुनानी, क्योंकि देखिये जो स्पेशल कोर्ट है उसने 5 दिसंबर से पहले मुशर्रफ को मौका दिया था कि आप आके अपना बयान रिकॉर्ड करें, तो उस पर मुशर्रफ साहब ने एक वीडियो मैसेज में कहा था कि आप कोई अपनी टीम भेज दें यहाँ पे और यहाँ पे आके वो मेरा बयान रिकॉर्ड कर दें, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इस पर भी बात होगी कि क्या उनको फेयर मौका मिला है कि वो अपने बयान रिकॉर्ड करें या अपना दिफा कर सकें, क्या उनके वकील को ये मिला है, तो इस पर यह बात जरूर होगी जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।
ये थी पाकिस्तान में राजनीतिक विश्लेषक बेनजीर शाह। बात ब्रिटेन की, जहां कंजर्वेटिव पार्टी ने हाल ही में चुनाव जीतने के बाद वहां पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। ब्रितानी मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के लोगों की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद से बात की।
देखिए, भारतीय मूल के जो एमपीज हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो कुल 15 इस बार जीत कर आए हैं, जिसमें 7 सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी में हैं और उसमें से 3 को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जो एक अच्छा रेशियो माना जा सकता है। उन तीनों में एक तो प्रीति पटेल हैं जो गृह मंत्री हैं, पहले भी थी, इस बार भी बनी है, और टेरेसा मे के समय में भी वो मंत्री थी लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, एक विवाद हुआ था उसके बाद। उसके बाद आलोक शर्मा है और ऋषि सुनक जो उभरते हुए युवा एक सियासतदान है भारतीय मूल के। और इसके अलावा अगर विपक्ष की बात करें तो लेबर पार्टी में भी 7 भारतीय मूल के लोग चुनकर आए हैं और एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में भारतीय मूल का एक सांसद है। तो ये एक अच्छा रोल अदा करते हैं भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध को मजबूत करने में, उसमें गहराई लाने में इनकी भूमिका होती है, इसलिए इनका महत्व है। और प्रीति पटेल एक महिला है और गृह मंत्री हैं और बहुत ही मजबूत मानी जाती हैं एक सियासतदान के तौर पर। और इसके अलावा पाकिस्तानी मूल के भी 15 सांसद चुन के आए हैं, उसमें लेबर पार्टी में उनकी संख्या ज्यादा है, कंजर्वेटिव पार्टी में उनकी संख्या कम है, लेकिन साजिद जावेद जो गृह मंत्री हैं, एक तरह से कहें नंबर टू पोस्ट वो है। पहले भी वो वित्त मंत्री थे और इस बार जब चुन के आए हैं तो उनको फिर से एक बार वित्त मंत्री बनाया गया है और उनका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है। वो बैंक के एक बड़े ओहदे पर थे 2010 में जब पहली बार जब पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता उन्होंने, तो उनका राइज भी काफी मैच्योरिक रहा है। तो इस तरह से भारतीय मूल के जो लोग चुने गए हैं इस मंत्रिमंडल में, इनको जो जगह मिली वो भारत से भी करीब माने जाते हैं। और जो ब्रेक्जिट यानी यूरोपियन यूनियन से अलहदगी करने की बात है ब्रिटेन की, उसमें भी ये आगे आगे रहे हैं, तो इसलिए भी इनको चुना गया है।
ब्रितानी मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के लोगों की क्या स्थिति है, बता रहे थे BBC संवाददाता जुबैर अहमद। एक बार फिर रुख करते हैं भारत का। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कल दोपहर कोर्ट परिसर में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। CGM कोर्ट में जज की मौजूदगी में हुई इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। बताया जा रहा है कि हत्या के एक अभियुक्त को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गईं, जिसमें उस व्यक्ति की मौत हो गई। पूरी जानकारी के साथ समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
गोलीबारी की यह वारदात उस वक्त हुई जब CGM कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई चल रही थी। CGM कोर्ट में पेशी पर आए हत्या के दो अभियुक्तों पर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिनमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा अभियुक्त भागने में सफल रहा। इस दौरान दो पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। हमलावरों को कोर्ट परिसर से ही गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। बिजनौर के पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने बताया कि हमलावरों ने बदला लेने के मकसद से फायरिंग की थी।
करीब 6 माह पहले थाना नजीबाबाद क्षेत्र में एक डबल मर्डर हुआ था एहसान खान और उसके भांजे का। उस अभियोग में जो मुख्य अभियुक्त शहनवाज अंसारी दिल्ली में सरेंडर किया था, उसकी कोर्ट में पेशी थी दिल्ली पुलिस के साथ, उसको यहाँ CGM कोर्ट में पेश किया गया था। यहाँ पेशी के दौरान एहसान खान के पुत्र ने अपने दो साथियों के साथ कोर्ट परिसर के अंदर उसको गोली मार दी है, उसकी मृत्यु हो गई है। कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं इस फायरिंग में, उनका इलाज करवाया जा रहा है। तीनों अभियुक्तों को मौके से पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया है, वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है।
हालांकि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमलावरों को पुलिस ने नहीं बल्कि वहां मौजूद वकीलों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। कोर्ट परिसर के भीतर हुई इस फायरिंग से वहां दहशत फैल गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस वक्त फायरिंग की घटना हुई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहां मौजूद थे और उन्हें भी भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। घटना के चश्मदीद रहे एक वकील का कहना था,
12:30 बजे से CGM कोर्ट में पेशी हो रही थी। मुवक्किल और वकील वहाँ CGM साहब सुनवाई कर रहे थे, बैठे हुए थे। करीबन 1:15 बजे के आसपास कुछ लोग वहाँ पे अचानक आए और उन्होंने जो लोग दिल्ली से पेशी पे लाए हुए थे मुलजिम, उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ काफी हवड़ा तबड़ी मच गई।
इस दौरान पेशी पर आया दूसरा अभियुक्त वहाँ से भाग निकलने में सफल रहा। कोर्ट में मौजूद हेड मुहर्रिर समेत दो पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले में धारा 144 लागू होने और हत्या के अभियुक्तों की पेशी की वजह से सुरक्षा व्यवस्था में चौकसी के बावजूद कोर्ट परिसर में हथियारबंद लोगों के पहुंचने और हमला करने की घटना से पुलिस भी स्तब्ध है। SP संजीव त्यागी का कहना है कि इस बात की जांच की जा रही है कि सुरक्षा के बावजूद हथियारबंद लोग वहां कैसे पहुंच गए। समीरात्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। पोप फ्रांसिस ने ऐलान किया है कि नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में गोपनीयता का नियम लागू नहीं होगा। इससे पहले रोमन कैथोलिक चर्च कहता था कि वो पीड़ितों की निजता और अभियुक्तों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोपनीयता बरतता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को चेतावनी दी है कि वो उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट न करें, क्योंकि ये अमरीका के लोकतंत्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा होगा। पोलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक सिस्टम में प्रस्तावित सुधारों से यूरोपीय संघ में देश की सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। नए बिल से सरकार के लिए जजों को हटाना आसान हो जाएगा, लेकिन कोर्ट का कहना है कि ये यूरोपीय संघ की संधियों का उल्लंघन होगा। भारतीय फिल्म अभिनेता और रंगकर्मी श्रीराम लागू का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से बीमार थे। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में $1.4 ट्रिलियन का बजट पास किया गया है। इसके साथ ही आंशिक रूप से सरकार का काम रुकने की संभावना भी टल गई है, क्योंकि सरकारी फंड शनिवार को खत्म होने वाला था। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। शाम 7:30 बजे दिन भर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।